أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام م. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
الحمد لله. سنا آپ نے، اب کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ صرف ترجمہ جان کے بھی تھوڑی بہت تو سمجھ آئی ہوگی، تفسیر سے انشاءاللہ اور بھی زیادہ سمجھ آ جائے گی. تو ابھی تک ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ابھی تک جو بات ہم نے پڑھی ہے، کیا ابھی ہمارے اندر ہونا چاہیے؟ اگر ابھی تک یہ نیت نہیں تھی تو اب یہ نیت ہونی چاہیے کہ مجھے بچنا ہے. پہلے اگر نہیں بھی کی تھی نا، تو اب اپنے اندر یہ طلب پیدا کریں، یہ تڑپ پیدا کریں. کیونکہ دیکھیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس، آپ کو ڈاکٹر آپ کو بہترین میڈیسن دے دے، بہترین میڈیسن، لیکن اس کے بعد آپ پرہیز نہ کریں جو اس نے پرہیز بتایا، تو وہ دوا کام نہیں کرے گی. اسی طرح اگر ایک انسان گناہوں سے بچتا نہیں ہے اور بچنا چاہتا نہیں ہے، تو قرآن جیسی دوا بھی آ جائے نا، تو وہ پھر بھی کام نہیں کرے گی. تو اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے. تقوی کیا ہے؟ بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. یہ طلب بھی اندر ہونی چاہیے اور گناہوں سے ویسے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ قرآن اثر کرے گا، جلدی اثر کرے گا. اور جو اس احساس کے ساتھ آئے گا نا، جس کو یہ فکر پڑ جائے گی کہ بس مجھے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اس کو ہدایت انشاءاللہ مل جائے گی. وہ پا لے گا، وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا. تو یہ ہم جس راستے پر جانے والے ہیں، یہ ہمیں ہمارے مالک کی ناراضگی سے بچانے کے طریقے بتائے گا. اور شروع میں اس بات کو بتانے سے کیا فائدہ ہمیں ملا؟ کہ دیکھیں، سب کو ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے، اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں متقی بننا پڑے گا، ورنہ یہ رہنمائی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. آپ الفاظ سیکھ لیں، معنی رٹ لیں، ترجمے رٹ لیں، نوٹس لکھ لکھ کے کاپیاں بھرتے جائیں، فائدہ پھر بھی نہیں ملے گا، پھر بھی نہیں ملے گا. تو 10-10 دفعہ بھی قرآن پاک کو اس طرح پڑھ لیں گے نا، پھر بھی نہیں فائدہ ہوگا. وہ دیکھ لیں جنہوں نے ریسرچز کی ہیں اس کلام پہ اللہ کے، پھر بھی نہ ان کو فائدہ ملا، تقوی نہیں تھا نا، تقوی مسنگ ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی پیدا کرنا ہے اپنے اندر، آج ہی سے اس کی نیت کرنی ہے. الذین، اب یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ یا اللہ، ہمیں تو نہیں پتا متقی کیسے بنتے ہیں، ہم کیا کریں متقی بننے کے لیے؟ تو آگے دیکھیں، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. ایمان، ایمان اس یقین کا نام ہے، اس اعتماد کا نام ہے، اس بھروسے کا نام ہے کہ جو انسان کو اطمینان دے دے، کہ انسان کو اب کوئی دل میں نا ایسے جو شک ہے وہ نہ رہے، اطمینان آ جائے اس کو. تو یہ ہوتا ہے ایمان. تو ایمان کس پہ ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مضارع ہے، یعنی یؤمنون یا سے جو شروع ہوتے ہیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع. یعنی اس کا میننگ پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے اور فیوچر میں بھی ہوتا ہے. تو جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھیں گے कॉन्टेक्स्ट से भी पता चल जाता है आपको कि फ्यूचर में करना है या प्रेजेंट में। किस पे? बिल गईब, गईब पे। जो लोग गईब पे ईमान रखते हैं, सबसे पहली क्वालिटी मुत्तकीन की ये है, गईब पे ईमान रखना। ठीक है। अच्छा, अब गईब क्या चीज है? मैंने आपको बताया जो अनसीन है, जो आपकी सेंसेस से बियॉन्ड है, उसको कहते हैं गईब। और सबसे पहली ये चीज लाई गई, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जो सबसे पहले लाई गई। ये नहीं कहा गया कि मुत्तकी वो हैं जो यकीमून सलात, पहली चीज सलात भी आ सकती थी, वो सेकंड नंबर पे है, कोई और चीज भी आ सकती थी, खर्च करने की भी पहले बात आ सकती थी। गैब पे ईमान लाना, ये क्यों सबसे पहले क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेस है, ये बेस है, बाकी सब चीजों की बेस इस पे है, गैब पे ईमान लाना। और गैब में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अल्लाह ताला की जात क्या है? गैब है। फरिश्ते क्या हैं? गैब है। अंबिया गैब है हमारे लिए अब, ठीक है। अच्छा, फिर जन्नत जहन्नम क्या है? गैब है। ये सब चीजें गैब की। अगर कोई इंसान कहे कि नहीं जी मुझे पहले दिखाओ, जन्नत दिखाओ जहन्नम दिखाओ, मैं जब तक देखूंगी नहीं, मैंने मानना नहीं है, बरज़ख दिखाओ कब्र का हाल दिखाओ, तो ये नहीं पॉसिबल। इंसान को सबसे पहले गैब पर ईमान लाना पड़ेगा कि हाँ कोई है चीजें जो मेरे हवास से बियॉन्ड है। और साइंस को अगर आप देखें तो साइंस की तो डेफिनेशन यहीं पे जाके आप निकाल दें उसको तो यहां से, क्योंकि साइंस तो कहती है जो चीज आप प्रूव कर सकते हैं वो ही सही है, जो चीज प्रूव ही नहीं हो सकती वो तो नहीं है। तो गैब तो ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ का नाम है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा, आप सुन नहीं पा रहे, आप सूंघ नहीं पा रहे, आप टच नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो है मौजूद। ये आपको ईमान रखना पड़ेगा। तो ये सारा ईमान, ये यकीन, ये भरोसा होगा गैब के ऊपर। अच्छा, कई चीजें गैब हैं आज भी, हमारे हमें दिखाई नहीं देती, मसलन टेम्परेचर है, ये गैब है, लेकिन हम उस पर तो ईमान रखते हैं, है ना। हमें हम अगर हम ये कहें ये दीवार के पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब दीवार के पीछे कुछ है ही नहीं है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। अब मैं कहूँ आसमान आसमान में मुझे तो कभी नहीं कुछ नजर आया ऊपर, और कब्र है, कब्र में हम तो खोलते हैं कुछ भी नहीं नजर आता, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें नजर नहीं आ रही वो है ही नहीं है। अब मैं छत के ऊपर नहीं देख सकती इस वक्त, तो मैं ये इनकार ही कर दूं कि मुझे, मैं बिलीव ही नहीं करती इसके बाद कुछ है। हम तो उस बच्चे की तरह जो माँ के पेट में है, उसको लगता है यही दुनिया। दुनिया तो इससे बियॉन्ड बहुत कुछ है आगे, और हमें सब बिलीव करना है कि वो है, इसके बाद भी कोई दुनिया है और इससे बियॉन्ड भी कई है। अब हमने भी तो नहीं सितारे सैयारे ये तो नहीं, हमने तो नहीं देखे हरकत करते हुए, जमीन को हमने तो मूव करते हुए नहीं देखा, साइंटिस्ट ने ही बताया, तो हमने उसको मान लिया ना, उनकी बात को हम मान लेते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ये बात बता रहा है, उसको हम कहेंगे नहीं हमने मानना, हमें प्रूफ लेकर आओ, हमें दिखाओ, हम तब मानेंगे। नहीं, यहीं पे आपको सबसे पहले कुरान शुरू होता है तो गैब की बात पे ईमान लाना है। गैब है, चीजें हैं जो आपके हवास से बियॉन्ड है, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप कोई आगे बात करो। क्योंकि अगर आप यहीं पे तजब्जुब में है कि पता नहीं है कि नहीं है, मुझे क्या पता, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने तो आपको बताया नहीं, तो फिर आगे तो चल ही नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए सवाब क्या है? नजर आता है आपको? नहीं, तो फिर तो अल्लाह की खातिर नेकी वही कर सकता है जिसका बिलीव हो गैब पे, क्योंकि सवाब तो गैब है, अनसीन है ना। वरना तो इंसान इधर देखता है कि मुझे यहां इतने इतने पैसों की नौकरी मिल रही है, तो पैसे सीन है या अनसीन है? वो तो सीन है, वो तो सामने नजर आ रहे हैं, तो मुझे पैसे दिखते हैं तो मुझे फायदा नजर आता है। और दूसरी तरफ ये जो सवाब मुझे मिल रहा है कुरान पाक के सीखने से, समझने से, ये जो मैं इस वक्त अपना वक्त लगा रही हूं, इस पे जो मुझे सवाब मिल रहा है, ये अनसीन है, ये नजर तो नहीं आ रहा। अब चूंकि हम नजर आने वाली चीजों के ज्यादा हरीस होते हैं, उनके पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे और कोई फायदे नजर आ रहे हैं हमें, कोई इनाम मिल रहा है, कोई और चीज मिल रही है, उसको प्रेफर करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। यहां बैठने के ऊपर, ये सुनने के ऊपर, ये सीखने के ऊपर वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है, सवाब आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम कम हरीफ हैं, हम इसके लिए ज्यादा नहीं चाहते कि हम वक्त लगाएं। अब हमने सूरह बकरा की इतनी फजीलत पढ़ी, मुझे बताएं हमें कोई नजर आ रही है ये फजीलत कि शैतान भाग गया या फिर हमें वहां पे कुछ मिलेगा? ये सब तो गैब ही है ना। तो गैब पर अगर ईमान होगा तो ये सीखना भी कुरान आसान होगा, कि चाहे मुझे अजर नजर नहीं आ रहा लेकिन है इसका अजर। और जिसका ये ईमान कमजोर है, ये नहीं मैं कहती कि नहीं है किसी का ईमान, लेकिन जिसका ईमान कमजोर है वो क्या कहेगा, हाय इतना मुश्किल आए, इतनी देर बैठना, इतना टाइम लगाना पड़ता है ना, इतना लंबा, लो इतने में तो हम कुछ और काम कर लें, तो कितने पैसे बना लें या घर के कितने काम निपटा लें। इसलिए कि सामने ये फायदे नजर आ रहे हैं, ये सीन है, ये नजर से देखने जिसको आप महसूस कर सकते हैं, और ये चूंकि इसका अजर सामने नहीं है आज, तो हफ्ते में 3 घंटे बैठना भी कहते हैं हाय कैसे होगा, होगा ही नहीं। जॉब करने से पे मिलती है, वो तो सामने है, उसके लिए मैं पूरा जोर लगाऊं, उसके लिए कोई मेरे पीछे नहीं भी भागता कि आ जाओ नौकरी के लिए, कोई नहीं रोज सुबह फोन करता, मैं खुद फिक्र के साथ उठती हूं और दौड़ती हूं, नौकरी का मामला है, मुझे अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ती है, बच्चों का टाइम में कमी करनी पड़ती है, घर के टाइम में कमी करनी पड़ती है, अपने आराम में कमी करनी पड़ती है, कई कामों को पीछे करना पड़ता है, तब भी मैं करती हूं। क्यों? इसलिए कि वहां पे मुझे कुछ आता हुआ नजर आ रहा है, मैं खुशी खुशी सह जाती हूं सब कुछ इसी वजह से। लेकिन मेरी बहनों, यहां पे वही मेहनत करेगा, वही वक्त लगाएगा, वही इसके लिए कोशिश करेगा जो गैब पर ईमान रखता होगा और जिसका ईमान मजबूत होगा। अगर हमारा ईमान, मैं कहती हूं, बराबर भी होता ना उतना जितना हमें ये जो चीज हमें दिखती है, जैसे ये हमें सामने नजर आती है, जैसे इसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, अगर हमारा ईमान इतना ही हो जाता गैब पर, तो हम इस अजर को पाने के लिए एक दूसरे से आगे दौड़ते, हम रेस लगाते इस इल्म को लेने के लिए। मगर मसला ये है कि हम ये देख रहे हैं कि वहां से पैसे मिलते हैं, पैसों से मेरी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन हम गैब के पर्दे के पीछे ये नहीं देख रहे कि नेकी कमाने से, इसको सीखने से मेरी आखिरत की जरूरतें पूरी होंगी, जहां उधार देने वाला कोई नहीं होगा, जहां की जरूरत पूरी ना हुई तो आ गया अंजाम, जहां मैं सबसे ज्यादा मोहताज होंगी, ये मेरी वहां की जरूरतें पूरी करने के लिए। मुझे आज यहां की जरूरतें बहुत बड़ी नजर आती हैं, मुझे आज यहां के काम बहुत बड़े नजर आते हैं, मुझे आज यहां के फायदे बहुत बड़े नजर आते हैं, इसीलिए मैं नेकी के बहुत से चांसेस को गंवा देती हूं। कई नेकी के चांसेस हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं मुझे क्या पड़ी है, खुद कर लेना, खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, खुद अपने, क्योंकि हमें सवाब नजर नहीं आ रहा ना, हमें अजर नजर नहीं आ रहा, हम दुनिया के कामों के लिए भाग भाग के भी थकते नहीं है, शिकायत नहीं करते, मगर इस काम के लिए हमारे होंठों पर फौरन शिकायत आ जाती, हाय हाय फौरन निकलता है, बड़े थक गए, बहुत काम कर रहे हैं। ओहो, अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी है ना, अल्लाह ने एक नेमत सारी को तो छोड़ दें, एक नेमत को भी आप उसके बदले में भी काम करने लगे सारी जिंदगी काम करते रहे उस एक नेमत की कीमत नहीं दे सकते। तो इतनी नेमतें लेके बैठे हुए हो और अल्लाह के लिए कुछ देर निकालने को कहते हो हाय हाय, कितनी उसकी दी हुई नेमतें इस्तेमाल कर रहे हो। किन चंद घंटे या चंद दिन जिंदगी के, इतने दिन तो बगैर इसके गुजार ही दिए, अब जो शुरू किया तो उसके ऊपर भी हाय हाय निकलने लगी। बहुत सारे लोग काम करने में हाय हाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने पे हाय हाय कर रहे हैं, क्यों हाय निकल रही है? कितना दे दिया तुमने अल्लाह को, कितना दे दिया जिसके ऊपर हाय हाय कर रहे हो? वो तो तुम्हें इस पे भी अजर दे रहा है, अगर ना भी दे रहा होता तो उसकी नेमतें इतनी काफी थी कि तुम उसके बदले में ही इतना कुछ करना चाहिए था कि सारी जिंदगी तुम उसकी खिदमत उसके दीन की करते रहते। लेकिन इस पे भी वो अजर दे रहा है। अब वो अजर तो नजर नहीं आ रहे, हमें कहां नजर आ रहे हैं जन्नत के बाग, हमें कहां नजर आ रहे हैं कोई परिंदे हमारे पर साहिबान कर रहे हो, हमें कहां नजर आ रहे हैं कि जन्नत में हमारे लिए महल तामीर हो रहे हैं, हमें कहां नजर आ रहे हैं? तो जो जो चीज नजर नहीं आती हमें उसकी परवाह ही कहां है, हम क्यों उसके लिए अपनी जान खपाएं? तो ये ईमान स्ट्रांग करने की जरूरत है सबसे पहले, गैब का ईमान है, गैब है, वहां पे जन्नत, वहां पे वो सब कुछ है जिसका मुझसे वादा किया गया। अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के वादे हैं, सवाब है, लिखा जा रहा है, मेरी बुक है, जो ये किरामन कातिबीन हैं लिख रहे हैं, ये भी तो गैब है ना, लिख रहे हैं इस वक्त मेरा एक एक लफ्ज। लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा हमें भूलती है, इसीलिए हमारी तरजीहात, हमारी प्रायोरिटीज जो है ना स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि गैब पे ईमान कमजोर है। आज तो देखें इन्होंने भी मान लिया, इंग्लैंड का एक बड़ा मशहूर फिलोसोफर है ब्रैडली, उसकी किताब में उनवानी अपीयरेंस एंड रियलिटी, उसने लिखा जो कुछ नजर आ रहा है ना वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी इसके पीछे है। कन्फ्यूशियस को जो लोग जानते हैं, चाइना का बड़ा हकीम और फिलोसोफर था, वो क्या कहता है, देर इज नथिंग मोर रियल देन वॉट यू कैन नॉट सी एंड देर इज नथिंग मोर सर्टन देन वॉट यू कैन नॉट हियर। वो भी मान गए आप तो कि ये जो सामने नजर आ रही ये रियलिटी नहीं, रियलिटी तो कुछ और है, इसके पीछे छुपी हुई है कोई और चीज जो हम ना देख सकते ना सुन सकते, हमारे आवाज से बियॉन्ड है, लेकिन हमने इसको ही रियलिटी समझा हुआ जो धोखा है। तो गैब पे ईमान लाओ पहले, सबसे पहले अपना ये ईमान मजबूत करो। अब गैब पे ईमान होगा तो तभी हमें ये भी ईमान होगा ना कि एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आया था और उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही की थी और वो सारी बातें सही हैं और वो अल्लाह ही की तरफ से हैं। ये गैब ही तो है सब कुछ, हमने तो नहीं देखा। अगर आप मुझे कहें कि ये प्रूव करके दिखाओ और दिखाओ मुझे ये मैंने आंखों से देखना, तो वो तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आपको गैब पे ईमान लाना पड़ेगा, मुत्तकी की पहली सिफत यही है। फिर नंबर टू क्या है, वयुकीमून अस्सलात, नमाज को कायम करना, कि ये आपके ईमान का सबूत है कि आप नमाज को कायम करें। आप देखिए कुरान पाक में नमाज पढ़ने के लिए नहीं बात आती, कि नमाज को पढ़ते हैं, यकरा उनकी बात नहीं आती, क्या आती है, युकीमून, कायम करते हैं। कायम करने का मतलब क्या होता है, कि नमाज को इसकी तमाम शराइत के साथ, चाहे वो तहारत है, चाहे वो और वक्त की पाबंदी है, दवाम है, हमेशगी है उसके ऊपर, ये सारी चीजें कायम करने के अंदर है। चाहे उसके लिए जो इंसान खुशु व खुदू इख्तियार करे वो है, सब इसके कॉम्पोनेंट्स हैं कि इंसान सलात को कायम करे, यानी कि कभी पढ़ी और कभी नहीं पढ़ी, दुरुस्त तरीके से पढ़े, ऐसे पढ़े जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लु कमा रायतुमुनी सल्ली, तुम नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इंसान सही तरीके के साथ पढ़े, जाने वो तरीका क्या है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ी। और जब मुझे पता चल जाए तो मैं ये ना कहूँ कि नहीं, हमारी तो अम्मी ने हमें इसी तरह सिखाया था, हमें तो ऐसे ही पता है। नहीं, जब कोई हक दिखा दे, ये देखो ये तो बुखारी में हदीस है, ये तो मुस्लिम में हदीस है, तो फिर उसको मान जाए, फिर उस तरीके को अपना ले। ठीक है। और कायम करने में दूसरी एक और बात क्या है, तरजीह देना, इसको प्रेफरेंस देना नमाज को। ये नहीं है कि प्रेफरेंस है घर के और कामों को, प्रेफरेंस है नींद को, प्रेफरेंस है शॉपिंग को, बल्कि नमाज को प्रेफर करें। युकीमून अस्सला, तो नमाज कायम करने में तीन चीजें तो जरूरी जरूरी लिख लें। नंबर वन, इखलास, अल्लाह की खातिर हो। नंबर टू, नमाज का तरीका वही हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। नंबर थ्री, इसमें हमेशगी हो। ठीक है। कोई लोग करते हैं फजर पढ़ते नहीं है, जोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, फिर मगरिब छोड़ दी, फिर ईशा पढ़ ली, नहीं ऐसे नहीं, हमेशगी। या कभी ईद का दिन है तो आप नहीं पढ़ी, शादी है तो मेकअप किया हुआ तो आप कैसे पढ़ू, तो अब रात को देर से सोए हैं तो अब कैसे फजर के लिए उठूं, ना हमेशगी। ठीक है। अगर ये तीन चीजें मौजूद होंगी तो इकामत सलाह होगी। ठीक है। तो यकीमून सलाह, नमाज को कायम करते हैं, कयाम नमाज का, नमाज को वैसे पढ़ना जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और इसको तरजीह देना। इस दूसरा इसका माना, सलाह सिला से, सिला जोड़ने को कहते हैं ना, तो समझ लीजिए ये अल्लाह ताला से एक कनेक्शन जोड़ती है, और आपका जिससे कनेक्शन जुड़ जाता है आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसको याद रखते हैं, जिसे आपका ताल्लुक होता है उसी को याद रखते हैं ना। और अगर कभी वो नजर ना आए तो आप उसको मिस करते हैं, फलां कहां गया, वो तो जो आपके सामने रहता है, जो आपकी यादों में रहता है, वो उसी को आप मिस करेंगे जिसके साथ आपका वक्त गुजरता है। तो नमाज एक कनेक्शन है, इसीलिए जब आपका अल्लाह ताला से कभी, अल्लाह ना करे कभी दूरी हो, तो फिर फौरन कमी महसूस होगी। अगर कनेक्शन वीक होने लगेगा तो फौरन आप अलर्ट हो जाएंगे। तो नमाज की में दवाम पैदा करें, इसकी चोरी से भी बचें। इसकी चोरी क्या है, तेज 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 इसको पढ़ना, और इसके छोड़ना जो है, आपको पता है कि एक हदीस में आता है कि एक हुक्म जहन्नुम के अंदर जल जाता है। ये अगर किसी कोई एक नमाज भी जानबूझ के छोड़े, एक हुक्म क्या है, 80 साल जहन्नुम में, जहन्नुम की आग में, इससे अंदाजा कीजिए। और नमाज पढ़ने का, जो इंसान जो नमाज पढ़ता रहता है, तो इंशाल्लाह वो नमाज से उसके गुनाह धुलते रहते हैं। और इसका हिसाब सबसे पहले होगा क्यामत के दिन। अगर इसको अच्छी तरह अदा किया होगा तो हिसाब आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कोई कमी की होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे कि फिर मेरे बंदे की कोई नफल नमाज है तो उसको फर्जों की जगह पे जो फर्जों में कमी है उसको इससे पूरा किया जाए। तो अगर नफल भी ना हुए तो फिर तो बिल्कुल वो आदमी तो गया। तो नमाज को कायम करें। दूसरा इसका है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो रिस्क अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करें। हमने जो रिस्क दिया, रिस्क में क्या आ जाते, रिस्क क्या चीज है, रिस्क सिर्फ पैसों को नहीं कहते कि रिस्क आप सोच रहे हो कि तो मतलब है कि इसके अंदर से खर्च करें जो हमारे पास पैसे हैं, बल्कि रिस्क में है हर तरह की नेमत, हर तरह की नेमत, कोई मादी नेमत है, रूहानी नेमत है, यानी कोई मटीरियल है जो सामने नजर आने वाली है, या मान भी कोई नेमत है। जैसे मतलब नजर आने वाली क्या चीजें हैं, पैसे हैं, खाना है, पीना है, घर है, कपड़ा है, किसी को कोई और कोई चीज ऐसी ले दी, ये सारी मादी नेमतें। मानवी नेमत क्या है, यानी इल्म या हिकमत या सेहत, सॉरी हिम्मत, ताकत, ये सब मानवी है ना, नजर नहीं आती इस तरह से। तो जो भी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है ना, उसमें से खर्च करना। नंबर थ्री क्या क्वालिटी है मुत्तकीन की, कि वो गिविंग है। कुरान खोलते ही पहला सबक हमें किस चीज का मिला, बी गिविंग। दो, क्या दें या अल्लाह, जो अल्लाह ने आपको दिया वो दो दें। اب کوئی کہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں تو کوئی نہیں، صحت کی نعمت تو ہے نا، اپنی اس نعمت سے کسی کو فائدہ دو نا. آپ فزیکلی کسی کے کام آ سکتے ہیں، فزیکلی آ جائیں، یا آپ کے پاس کوئی علم ہے تو وہ اس کو سکھا دیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی چیز، جو آپ کے پاس نعمت ہے اس میں سے کسی نہ کسی کو حصہ ضرور دیں، شیئر کریں. کیا قرآن سکھا رہا ہے؟ شیئرنگ. یہ نہیں کہ میں نے کمائی کی ہے، میرا ہے، میں کیوں دوں، یا یہ میری صلاحیت ہے، اگر میں نے یہ اس کو علم دے دیا تو میرے پاس کیا رہے گا، میری یہ ریسیپی ہے، میرا یہ ہنر ہے، میری کی یہ بات ہے، اس کو بھی پتہ چل گئی تو اس کو بھی آ جائے گی. نہیں، یہ دینا انسان کے لیے تبھی آسان ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. رزقنا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے رزق دیا ان کو، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، متقین. تو جب انسان یہ دیکھ لیتا نا کہ یہ رزق میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت کے طور پہ دیا، تو پھر اس کے لیے خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا. یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزقناہم، کہ یہ مت بھولنا کہ ہم نے دیا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، یہ تمہاری کوئی کوشش یا تمہاری طاقت سے نہیں ہے. اگر زندگی ہے تو وہ بھی اللہ کی دیوی ہے، مال ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جوانی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، صحت ہے یا کوئی بھی اور نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو اس میں سے بندوں کا حق پورا کرنا، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ہم اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں جن کو دینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا، یا جن میں کسی کے کام اگر ہم آ جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، ہماری چیز میں کمی نہیں ہو جاتی، ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہو جائے گا، وہ بھی دینے میں بخیل ہوتے ہیں. ہمیں کیا، خود ہی کر لینا، خود ہی لے لے، مجھے کیا، میں کیوں بتاؤں. کوئی بات بتانا، ایک مشورہ دینا اچھا، وہ بھی صدقہ ہے، مسکرا دینا وہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس میں بھی بخیل ہے، یہ مسکرا کے بھی نہیں کسی کو دیکھتے، اس میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بخل صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی بخیل ہوتا ہے، وہ مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ ہر چیز میں بخیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے دور ہوتا ہے. اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور کس کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے. بخیل جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو کسی کو دیتے وقت جس کی مٹھی بند ہو جائے. اور پھر اگین بات وہی ہے کہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ہم مال دے دیتے ہیں لیکن کسی کو اور کوئی فائدہ پہنچانا، وہ اس میں اتنا بخل کرتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بس ہم پیسے جو صدقہ باکس میں ڈال دیتے ہیں، ڈونیشن دے دیتے ہیں، وہی کافی ہے، کسی کے بھی کسی طرح سے بھی کام آ سکے. وہ بات اگین، پھر وہی میں جاؤں گی واپس اس کی طرف، یؤمنون بالغیب کی طرف، کہ اگر انسان غیب پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کو وہ اجر نظر آ رہا ہو نا جو اس کو ملنا ہے، اس سے وہ نیکی نظر آ رہی ہو جو کسی کو سلام کرنے سے مل جاتی ہے، یا جو مسکرا دینے سے مل جاتی ہے، یا کسی کا چھوٹا سا کام کر دینے سے مل جاتی ہے. جب تک مسلمان کسی مسلمان کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے جو کرنے والا. لیکن ہم کتنے ہی مواقع چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں سر پہ ہی نہ چڑھ جائے کہیں، اس کو عادت ہی نہ کہیں پڑ جائے کہ دوبارہ پھر آ جائے گا کچھ کہنے کے لیے. اگر ایک دفعہ میں نے شروع کر دیا نا دینا اس طرح، تو پھر ہماری تو یہ سوچ ہوتی ہے نا. اتنے بخیل ہو جاتے ہیں، اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، جن کو خرچ کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بخل سے بچائے ہمیں. کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ سخی سے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو یہ سخی سے وہ بہت بوس کھاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ سخی جو ہے نا جو بہت دیتا ہے وہ کسی نہ کسی دن مرتبے پا جائے گا، اور بخیل سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ بخل کرنے سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے، نیکی میں پیچھے رہ جائے گا. تو جو نعمتیں بھی آپ کو ملی ہیں، نظر دوڑائیں کیا کیا ملا ہوا ہے. نہیں، آپ کو دوسروں سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمت ملی ہو، دوسروں سے زیادہ طاقت ملی ہو، दूसरों से ज्यादा आपको कोई और फायदे की चीज मिली हो, कोई भलाई मिली हो, तो उसको अल्लाह की मखलूक के साथ शेयर करें, बड़े दिल वाले बने। ठीक है, जो भी आपकी पोजेशन में है, मुत्तकी जो होते हैं ना, वो देने वाले होते हैं, वो हर वक्त किसी ना किसी को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन में से बनाए। वो अल्लाह ताला ने ही दिया, देखें अब ऐसे ही है, मैंने आपको कई दफा मिसाल दी है कि कोई किसी बच्चे को आप कोई चीज दे देते हैं और उसके बाद आप उसको कहें कि लाओ दो मुझे, और वो कहे कि नो माइन मेरी है, तो आप क्या कहेंगे? आपको अलग चाहिए नहीं होती, लेकिन आप क्या कहते हैं, लाओ दो मुझे, जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए। तो अल्लाह ताला भी टेस्ट करते हैं, लाओ दो मुझे, मेरे रास्ते में दो, देखते हैं कि कौन अल्लाह की दी हुई चीज उसको देता भी है कि नहीं, कौन सी चीज को आप क्लेम करेंगे कि वो आपकी अपनी है, कोई भी नहीं है। तो फिर देने में इतना बुखल क्यों है? मसला तभी आपको होगा जिस वक्त आप हर चीज को समझते हैं बस मेरी है, मेरी है, मैं क्यों दूं। तो रिस्क में हर नेमत जो अल्लाह ताला की तरफ से मिली भी है, हर खैर भलाई, ठीक है, आप देखें सहाबा कराम सुभान अल्लाह, वो तो इस तरह से दिया करते थे। एक दफा एक सहाबी को किसी ने बकरी की सिरी हदीये के तौर पे दी, तो उन्होंने सोचा कि मेरे फलां जो साथी है ना, वो ज्यादा जरूरतमंद है, फैमिली वाला है, उसको ज्यादा मोहताजी है, उनके घर भेज दी। वो जब उनके घर भेजी तो उनको किसी तीसरे का ख्याल आया, उन्होंने उनके पास भेज दी, उनको किसी और का ख्याल आया, उन्होंने उनके पास भेज, इस तरह 7 घरों में फिर के वो सबसे फिर के फिर वापस वो पहले के घर में लौट आए। सुभान अल्लाह, इतना वो गिविंग थे एक दूसरे के लिए। हम तो हमारे पास फालतू भी होती है ना, वो भी नहीं किसी को देना चाहते। दो चीजें भी पड़ी होंगी तो कहेंगे नहीं एक एक्स्ट्रा रख लूंगी, चलो किसी दिन काम आ जाएगी, बस दूसरे को नहीं देनी। सुभान अल्लाह, तो वो लोग अपनी जरूरत के ऊपर भी दूसरों की जरूरत को मुकद्दम रखते थे। तो अल्लाह ताला ने पहला सबक ही देने का दिया, और यहां से इस बात से ये भी पता चलता है कि अगर किसी का दिया हुआ तोहफा आप आगे किसी और को तोहफा दे दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई इंसान सोचे कि हो सकता है फला मेरे से ज्यादा जरूरतमंद हो, मैं उसको ये चीज दे दूं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो तिलावत सुनते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم